Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Gambhiranandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Shvetashvatara Upanishad, Prathamadhyaya, Sambandha Bhashya, Kabhichara Chalara. तो विष्णु विष्णु धर्म उत्तर पुराण उसमें मोक्ष विषय में क्रम बताया कि शुद्धि अंतकरण के शुद्धि के अभाव से मोक्ष का अभाव हो जाता है, अर्थात अंतकरण की शुद्धि मोक्ष के लिए आवश्यक है, ये बताया। नेक्स्ट कहा कि यदि शुद्धि चाहिए तो फिर कर्म से ही वह शुद्धि संभव है। कर्मभिश्च तत् शुद्धिं दर्शयति, फिर जो कर्म के द्वारा उस शुद्धि को फिर दिखा रहे हैं। ये कह करके अनुचानस ततो यज्वा कर्मन्यासि ततः परम ततो ज्ञानित्वमभ्येति योगी मुक्तिं क्रमाल लभेत। अनुचानस है? जो वेद अध्ययन करना जिनका स्वभाव है उनको अनुचानस कहते हैं। वेद अध्ययनशील अर्थात वेद को हमेशा अध्ययन करे। अब उससे क्या होगा फिर यहां तो फिर उसका तो सिद्धि हम बता रहे हैं। ततो यज्ञ उसके बाद यजन करे, हवन करे, उसके बाद फिर उन हवन कर्म ये सबको फिर त्याग दे। अब त्याग देंगे तो ठीक है, वो तो करते नहीं है, लेकिन बड़े बड़े महात्मा लोग भी करते हैं, करवाते हैं, ऐसे भी तो देखा गया। बहुत बड़े एक यति, क्या नाम उनका, यति तो है आखिर में, प्रसिद्ध है वो काशी में। वो जब फॉरन भी जाएंगे तो उनके शिवलिंग का अभिषेक करना, जो उनका एक अनुष्ठान रोज करते हैं, तो भाई प्लेन में भी जाएंगे तो इतना बड़ा पेट्टी है उनका, दो पेट्टी है, उसमें सब चांदी का ही सारे बर्तन है, शिवलिंग को बिठाने के लिए जो अर्घा और सांब सारे बर्तन जिसमें दूध गिरता है, सारे बर्तन सब चांदी का ही है, पूरे वो दो पेट्टी है, उस दो पेट्टी को लेकर चलते हैं। फॉरन भी जाएंगे और यदि रात 12 बजे कोई जगह में पहुंचेंगे, रात 12 बजे उसका अभिषेक करा के स्नान करके अभिषेक करने के बाद ही फिर जो सोएंगे, इतना उनका कड़क नियम है। बधाई सुनने तो ये हम देखते हैं कि वो तो कर्म को तो त्याग नहीं त्याग, और बड़े सन्यासी महात्मा है, प्रसिद्ध है काशी में, गाजीपुर में उनका बहुत बड़ा एक सिद्ध पीठ भी है। तो इससे सिद्ध होता है कि कर्म त्याग ही बड़ी बात नहीं है, कर्म में जो फल की आकांक्षा है, जो कर्म में जो फल की आकांक्षा है उसका त्याग का महत्व है यहाँ। तो ततः परम कर्मन्यास, यानी कर्म का त्याग कर दे, अर्थात उसके फल की आकांक्षा ना करे। ततः ज्ञानित्वम अभ्येति, उसके बाद ज्ञानित्व को प्राप्त करता है, अर्थात जो आत्मिक जो विज्ञान है उसको प्राप्त करता है। फिर जो है वह योगी मुक्तिं क्रमात् लभते, इसी प्रकार क्रम से वह योगी मुक्ति को प्राप्त करता है। अनेक जन्म संसार चिते पाप समुच्चे नाक्षीणे जायते पुंसाम गोविंदाभिमुखी मति ही। अनेक जन्म संसार चिते, अनेक जन्म के ये जो संसार चिते, अब संसार चिते का मतलब क्या है, चित का अर्थ जो है चिते संग्रहित, चयन करना, संग्रहित करना, पेड़ के नीचे जब फल गिर जाते हैं फिर उसे चयन करना है, संग्रहित करना, चित्त यानी संग्रहित किया हुआ किसने संग्रहित किया है, कहा कि संसार में जन्म जन्मांतर से, अनेक जन्मों से, जन्मों के संसार से या संसार में कहो संग्रहित किया हुआ पाप समुच्चय, जो पाप पूंजी है। अब ये तो संसार एक बाजार है अब आप चुन लो हाँ? इसमें पाप भी चुन लो और पुण्य भी चुन लो, पड़ा हुआ है दो प्रकार, बहुत सारे तो बहुत सारे फल पड़ा हुआ है, बाजार में बिकते हैं, बहुत सारे फल बिकते हैं, लेकिन उन फलों का हम दो भाग में विभाजन करते हैं। अब नाम लेंगे तो कितना लेंगे, अब कितने प्रकार पाप है, कितने प्रकार पुण्य है, ऐसा कौन अभी बोलेगा आपको? हाँ, दो प्रकार फल हम बिकते हैं, एक पाप है और पुण्य है। तो हमने एक जन्म से, जन्म के संसार से जो चित्त यानी संग्रहित किया हुआ, क्या संग्रहित किया हुआ? पाप समुच्चय यानी पाप पूंजी, हाँ, बहुत सारे संचित किया हुआ है। नाक्षीणे जायते पुंसाम गोविंदाभिमुखी मति। अब वो न अक्षीणे, हाँ, उसमें संधि विच्छेद कीजिएगा, न का लोग कीजिएगा, अक्षीणे, हाँ, पुंसाम जायते, ठीक है, यदि उस पुरुष का यदि वो क्षीण नहीं हो जाता है, वो पाप पूंजी क्षीण नहीं हो जाता है, ठीक है, पाप ऐसे राक्षस जैसे सामने आएगा क्या कि उसको मार के तलवार से हम काट कर फेंक देंगे अभी? कैसे पाप आता है? हाँ, हाँ, अच्छा रूप लेकर आता है, हाँ, यानी है तो, लेकिन एक वृत्ति रूप ही है। हाँ, आखिर में जो है आप लोग थोड़ा अंतर्मुखी होकर साधना करो, आप लोगों को जैसे आपके अथ योगानुशासनम, हाँ, और आगे योग किसको कहते हैं? योग चित्त वृत्ति निरोध, हाँ, योग जो है चित्त वृत्ति के निरोध का नाम ही योग है, तब योग संभव है। अब योग तो सभी, हम तो योग करते हैं, योग मतलब तो ये आसन करना, योगासन, योगा योगा वो मतलब है ही है। तो इसलिए जो है आखिर योग शास्त्र में सब कुछ वृत्ति को ही कहा, वृत्ति ही है। पाप जब भी आएगी, आएगा सामने, वृत्ति रूप में ही। अब देखो आपका एक कोई एक पाप का फल का उदय होने का समय आ गया, आप घर में बैठे हैं, आप बोलेंगे यार एक टाइम हो गया पत्नियों का, चलो मुझे बाजार से जाकर के सब्जी लाना है, मार्केटिंग करना है। अब यूं कर मार्केटिंग करके निकले और जैसे कि उधर से कोई गाड़ी आई, एक्सीडेंट हो गया और गिर के हाथ टूट गया या पैर टूट गया। अब ये जो अंदर से एक वृत्ति उठी कि अभी मुझको जाना है सब्जी लाना, ये जो वृत्ति उठी वो पाप ही उस रूप में, वृत्ति के रूप में बाहर आ जाता है और फिर जो आपको एक काम में प्रवृत्ति करा देगा और उस काम में कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब क्योंकि ऐसा नहीं कि राक्षस जैसे आकर बैठेगा, मैं तुझे मारूंगा डालूंगा, थोड़ी सी बोलेगा और वृत्ति रूप में उठेगी, आपको ऐसा करवा देगी और उससे क्या होगा, ये जो ये शरीर ऐसा है, जो कुछ होना है इस शरीर से ही हो, शरीर को ही होना है और उस शरीर का ज्ञान फिर अंतकरण होता है। ये कुछ भी होगा, टूटा, अरे मेरा टूट गया टूट गया टूट गया। अब यदि आप ये से नहीं देखें, नहीं मेरा टूटा नहीं, आप बोलेंगे यदि दृष्टि बदला दिया तो फिर आपका दर्द खत्म हो जाता है। अब जिस बोला नहीं नहीं ऐसे किस हो गया, ऐसे किस हो गया, बस फिर दर्द शुरू हो जाएगा। ये ऐसे मजेदार की बात आती है, होती है। अब देश पकड़ो, देखो अरे ऐसा कैसे हो गया, आप पूरे साथ दुखी हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। जो भी कुछ होना है इस शरीर को ही होना है और फिर जो है अंदर से फिर मन को ज्ञान होगा, फिर मन फिर समझे, फिर उसमें फिर विचार शुरू कर देगा, ऐसा आप ऐसा कर देगा, फिर दुखी सुखी, फिर आत्मा के साथ संबंध होगा, फिर दुखी सुखी होना शुरू हो जाएगा। इसलिए जो वृत्ति ही आप देखिएगा, थोड़ा ध्यान में बैठिएगा, अभ्यास कीजिएगा, केवल सुनते तो सुनते ही है, लेकिन घर में थोड़ा सा 15-20 मिनट, आधा घंटा टाइम होता है, एक घंटा जो भी होगा, आप टाइम देके वृत्ति को अवलोकन कीजिएगा। वृत्ति क्या है, क्या क्या वो बोलती है अंदर से, क्या क्या दिखाती है, उसको देखिएगा और फिर आप जो उसका कमांडो बनिएगा, तो अनुशासन में रखिएगा, बस में रखिएगा, फिर बहुत कुछ हो जाएगा। नहीं तो आपको कैसा फंसे देगा स्वयं में, आप समझ नहीं पाए ऐसा होता क्यों है, बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो फिर ये जो है कि ये सारे ये पुरुष का ये पाप क्षीण हो जाने पर गोविंदाभिमुखी मति ही, वो मति जो है गोविंदाभिमुखी हो जाती हैं, हाँ, ईश्वर के ओर जो है मुड़ जाती हैं, हाँ, ठीक, हाँ। इसकी व्याख्या ऐसे करते जाएंगे तो बहुत कुछ ऐसे होता है वेदांत की तरफ से, इधर से उधर से। जन्मांतर सहस्रेशु तप ज्ञान समाधि भी, नराणाम क्षीण पापानाम कृष्ण भक्ति ही प्रजायते। सहस्र जन्मांतर हजार जन्मों में हजार जन्मांतरों में तपोज्ञान समाधि भी ही, तप से ज्ञान से समाधि से, ठीक है, नराणाम क्षीण पापानाम, लोगों का क्षीण पापानाम नराणाम, ये दोनों का जो है विशेष विशेषण भाव संबंध है, अर्थात जिनका पाप क्षीण हो गया है, जिस नर का पाप क्षीण हो गया है, ऐसा जो नर है उनका जो है कृष्ण में भक्ति प्रजायते, कृष्ण भगवान में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। बहुत आनंद आता है बोलने से, तप से ज्ञान से समाधि से, आप बताइए आप कौन कितना तप करते हैं। क्लेश पांच प्रकार बताया, उसका जो पाप क्षीण हो जाता है, अब ये तप करके योग योग दर्शन में आता है, तप क्या करता है, लोगों को मालूम नहीं पड़े, थोड़ा तप करने से लोगों को बहुत कष्ट होता है, क्या जरूरत है, हम फिर बैठ कर सोच विचार करेंगे, विचार से मेरा सब कुछ हो जाएगा, ऐसा लगता है। लेकिन जब तो तप नहीं होगा ना, क्योंकि देखिएगा कि निधिध्यासन जो है देहध्यास को मिटाने के लिए निधिध्यासन है, और जब निधिध्यासन अवस्था में हमको देहध्यास मिटाना है, अब देह में जो अध्यास दुनिया भर हम बिठा के पकड़ के बैठे हैं, अब थोड़ा सा हम चलते समय हमको कष्ट होता है, थोड़ा सा फैन नहीं घूमने से कष्ट होता है, खाने में थोड़ा इधर होकर सब कष्ट तो इधर ही उसकी ही तो होता है वो। अब इसको इसलिए शास्त्र में जाना, योग दर्शन में तप का महत्व, और आप जैन धर्म में जाइएगा तप का महत्व बहुत है। तो तप से क्या होता है ना, ये जो पकड़ जो है शरीर के साथ जो पकड़ है, ये जो है वो तोड़ फोड़ टुकड़ा टुकड़ा करता है, छिन्न भिन्न करता है, मरता है आदमी जो है। शारीरिक तप भी है, मानसिक तप भी है, वाणी का तप है, तप सारे तप को लीजिएगा आप, शारीरिक तप भी है, शारीरिक तप क्यों नहीं चाहिए, हाँ शारीरिक को क्यों नहीं तप नहीं चाहिए, जब आप थोड़ी सी सहन नहीं कर पाओगे तो शारीरिक तप नहीं चाहिए, सुबह थोड़ी सी ठंडी पानी आप स्नान नहीं कर पाएंगे और दुनिया भर बात सुनाएंगे तो फिर बहुत शारीरिक तप है। अब थोड़ी सी ठंडी पानी स्नान करते समय आदमी चूल्हा में तवा, गरम तवा में जब पानी डाल दोगे चुटचुट होता है ना, हाँ तवा खाली तवा है और पानी डाल दोगे चुटमु चुटमु करता है, ऐसे शरीर में जब ठंडी पानी गिरता है ना चुटमु चुटमु करता है, ऐसा हाल हो जाता है। हम लोग ऋषिकेश में सुबह उठ करके 3:30 बजे आइस वाटर है, गंगा जी तो आइस वाटर है, वहां डुबकी लगाना और स्वामी जी पास 4 बजे जाकर के पहुंचना है सुबह सुबह ठंडी दिनों में। बाहर दरवाजा खोलोगे ना आपको क्या हाल है, वो क्या हवा, वो क्या ठंडी हवा, पर हड्डी पूरा एकदम टूट जाती है एकदम, ऐसा ठंडी हवा चलती है वहां ऋषिकेश में, एक बहुत बड़ा एक विचित्र एक हवा चलती है, वो 12 बजे के बाद रात में रोज शुरू हो जाता है, पता नहीं क्या वहां का माहौल है, और दिन सुबह सूर्य उदय ही दिखाई नहीं पड़ता है, फिर 8 बजे तक जब हवा चलती धीरे धीरे बंद होते 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 9-10 बजे के बाद बंद हो जाता है। अब हमको पता ही नहीं था कि ऐसे हवा चलती है, अरे सुनसा हुआ रात में, क्या हुआ सुबह रात में पेशाब करने के लिए उठा, जैसे दरवाजा खुला ऐसे भूत जैसे वो हवा पूरा घुस गया, क्या हो रहा है, और सुबह देखा धीरे धीरे फिर बंद है। जब रोज ऐसा होने लगा फिर मैंने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ना यहाँ का ऐसी माहौल है, अब लज्जित, अब मैं बताऊं तो आप लज्जित क्या, अभी बताओ हमको पेशाब जाने के लिए भी इतनी ठंडी थी, इच्छा ही नहीं हुई, कमर के अंदर पेशाब करना पड़ा, 2 दिन करने के बाद हमको इतनी पश्चात हुआ, अरे नया नया आया था, मैं कहा ये क्या कर रहा हूं, मैं तो भगवान को दर्शन करने के लिए यहाँ सारा घर द्वार छोड़ा, जगह छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, और यहाँ आकर इतने को डर के मैं घर में एक डिब्बा में करके फिर उस डिब्बा को फेंकना, कितनी लज्जित बात है। फिर क्या किया, दूसरा दिन 4 बजे उठा, कहा कि इसको धंडा धनाइए, जाकर गंगा जी में पद्मासन लगा करके इतने पानी में 4 बजे बैठा, सुबह 6 बजे तक बैठा, मैंने 15-20 दिन तक किया मैंने, उस आइस वाटर में इतने तक रहा पूरा, शायद ज्यादा ही होगा मुझे याद नहीं अभी। अब तब जाकर फिर जो है आकर फिर वो हवा को छुटा, ये छुटा वो छुटा, फिर डर एक खत्म हो गया, फिर जाना फिर पीछा करना फिर आना सोना, धीरे धीरे रूटीन में आया। फिर बात है ना कि है एक चीज है शारीरिक अध्यास ऐसा है, आदमी पकड़ कर बैठा है थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो नहीं पड़ता है, मानो या ना मानो। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ ज्यादा नहीं करना है, हमको ज्यादा नहीं करना है, लेकिन करना भी चाहिए, नहीं करना से होता नहीं है। तो कुछ क्या होता है जो शरीर जो हम पकड़ रखे वो टूटता है प्राय, कैसे टूटता है जैसे मैं बता रहा हूँ। अब हमको कपड़ा रात में पहना हुआ एक ये बनियान है, स्वेटर है, उसके ऊपर कंबल है, उसको निकाल करके स्नान करने के लिए इच्छा नहीं होती है। अरे निकल कैसे, हवा लगती है, कैसे जाऊं कैसे जाऊं, देखते तो आधा घंटा बीत जाता है, अरे नहीं निकलना ऐसी रहना था ऐसी रहना था। अब यही तो टूट रहा है ना, टूटने का ढंग कैसा है, नहीं 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 स्नान करना और उसे निकालो कंबल को निकालो, फिर ठंडी लगा अरे क्या कैसे करेंगे, अरे फिर जो फिर स्वेटर को निकालो, यही तो टूट रहा है। मन को संभाल रहे हैं नहीं ऐसी नहीं होना चाहिए और यही तोड़ना है, इसका नाम ही तोड़ना है। फिर जो फिर निकाला पूरा हवा लगा, अभी चलो अभी खाली शरीर में जाकर डुबकी लगाओ आइस वाटर में। अब ये जो फिर मन को संभाल करके फिर जाकर के लगाना, और गुरु जी का नियम है बिना स्नान करके दर्शन नहीं कर सकते, और चार बजे फिर आकर दर्शन करना है, चार बजे दर्शन करना है। और ये नहीं कि धूप निकलेगा धूप में गर्मी में जाकर स्नान करेंगे आएंगे, ये बात नहीं है। चार बजे दर्शन करने का नियम है और बिना स्नान से तो जा ही नहीं सकते। तो ये जो मन को जो संभालना है, मन को इस पर संभाल संभाल के जो तोड़ना है, और यही जो आसक्ति है उसको तोड़ तोड़ कर नहीं 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 होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, यही तोड़ना है। फिर जाकर डुबकी लगाओ तो फिर आने के बाद क्या मैं बताऊं, जैसे सौ सिंह का बल आता है, चलो इतनी तो कर दिया आज, अभी देखा जाएगा आगे और फेस करेंगे आगे क्या है देखेंगे। ये हमारी मुनि ऋषियों की संस्कृति है, परंपरा है। आप अपने गृहस्थी की बात सुनाएंगे तो फिर आपकी जगह में ठीक है, नो प्रॉब्लम, उसको कोई टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऋषि मुनियों का जो तप है, जो तितिक्षा जो जंगल में रहकर जो बताया गया है, हमको तो भी कुछ भी मालूम नहीं था, हम भी तो सोच रहे थे ऐसा क्यों बताया जा रहा है, और ये आखिर ये लोग क्यों ऐसा क्यों कर रहे थे, ये प्रश्न यहां है। यदि कुछ कर रहे थे तो जरूर कुछ ना कुछ महारहस्य होगा, अगर हमको अनुकूल नहीं हो रहा है, हमारा शरीर से नहीं हो रहा है, तो ये अलग बात है वो, लेकिन वे लोग जो किए थे उसमें भी कुछ सत्यता है, ये हमारी कहना है। और करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ चीज हाथ में आ जाएगी, जितना जैसे सामर्थ्य है। अब हमको देख करके एक महात्मा जो है, हम चाय कोई गर्म चाय बांटते थे, वहां तो पूरा महात्मा लाइन लगाकर खड़े हैं, थोड़ा दूध और कुछ चाय पत्ती देते हैं, लाइन लगाकर खड़े हैं। उस समय में एक महात्मा करीब 85 इयर्स ओल्ड, एक महात्मा ये आंध्र प्रदेश का तेलुगु महात्मा और काला था। हम लोग सब जो है हाथ में ग्लोव मंकी कैप स्वेटर ऐसे खड़े होकर के दूध गर्म दूध लेने के लिए खड़े हैं सब। अब वो महात्मा एक कपड़ा जो है हम लोग ऐसे बांधते हैं ना, ऐसे बांधते हैं एक कपड़ा बांध करके ऐसे आ रहे हैं। मैं देख रहे आश्चर्य हो गया, अरे कहां जा रहे हैं ये, जाकर सामने गंगा जी है, गंगा जी में गए और पूरा डुबकी ऐसे डुबकी लगा रहे हैं उठ रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं उठ रहे हैं, आश्चर्य है। और जबकि कोई बड़ा आंध्र प्रदेश में ठंडी हो रही थी, ठंडी का अभ्यास है और इसीलिए वो स्नान कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, वो तो उस जगह बिल्कुल ठंडी ही नहीं है। कहने का मतलब है तप से भी कुछ है, वो ऐसी बात नहीं है। तप ज्ञान समाधि भी, ज्ञान से समाधि से ये जो जन्म जन्मांतर का जो है ये नाश हो जाता है, पाप क्षीण हो जाता है, उससे जो है कृष्ण भगवान में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। पाप कर्माशय ह्यत्र महामुक्ति विरोध कृत तस्यैव समने यत्नः कार्यः संसार भीरुना। कर्माशय ये शब्द जो है ये योगी की शब्द है, कर्म संस्कार समूह, ठीक है, कर्माशय पाप कर्माशय पाप कर्म संस्कार समूह ही अत्र अत्रान इस लोक में, ठीक है। महामुक्ति विरोध कृत यानी महामुक्ति का वो विरोध है, विरोधी है। तस्यैव उसका ही समने दमन होने पर, सम होने पर, शांत होने पर, यत्नः कार्यः, यत्नः यत्न करने वाला कार्य नहीं करना चाहिए, संसार भीरुना यानी संसार को जो डरता है, डरने वाला। ऐसा मैंने एक एक पद बता दिया, अभी थोड़ा सा अन्य करके बताना है। तो ये जो है, ये जो पाप कर्म का, जो अनादि काल का जो पाप कर्म का संस्कार समूह, ये मुक्ति का विरोध है। जैसे योग दर्शन में आया कि वो समाधि का विरोध है, जब तक उसका बीज दग्ध नहीं हो जाता है तब तक समाधि संभव नहीं है, उधर की बात है। और इधर की बात है कि महामुक्ति विरोध कृत, जो अत्यंत जो मोक्ष है, सर्व दुख निवृत्ति, सभी वासनाओं को खत्म कर देना, जला देना, और फिर जो मुक्ति प्राप्त कर लेना, उसका वो विरोध है। तसे ही वो समने यत्न कार्य संसार भीरुना। अब देखो कितने बढ़िया चीज बताया कि जब तक उसका जब दमन नहीं होगा, यानी नाश नहीं होगा, और कौन नाश करने वाले हैं, कौन प्रयत्न करता है, कहा कि संसार भीरुना संसार का जो डरने वाला है, जो संसार का डरने वाला जो यति है, यत्न करने वाला जो यति है, तो उसका दमन करने में यत्न कार्य है यानी कर्तव्य करना चाहिए, यत्न करना चाहिए, यत्न कार्य यानी करना चाहिए। कौन? संसार को जो डरने वाला है। अब संसार को कोई डरता नहीं है, संसार को जकड़ करके पकड़ने वाला पकड़ता है, संसार से डर ही नहीं है यहां तो कहा कि संसार भीरुना, लेकिन संसार, हम लोग तो संसार में पूरा भिड़ जाते हैं, संसार में भिड़ जाते हैं, और यहां तो संसार से तो डरना चाहिए वो, और हम तो संसार से भिड़ जाते हैं। अब संसार में भिड़ने के बाद भी हमको डर नहीं है। सब आकर सुनाते हैं कि स्वामी जी पूरा काम हम करते हैं, थोड़ा सा गैप जब होता है ना, फिर भी हमको लग रहा है क्यों सुना सुना है, कोई और काम पकड़ लेते हैं। थोड़ा सा खाली होने पर लगता है कि आदमी, अरे मैं अब कोई किसी के सामने बता, वो जब बातचीत होती है फ्रेंड सर्कल में जब बातचीत होती है कि तेरा तेरे पास टाइम है, टाइम है बोलने से आदमी को लज्जा आती है कि देखो ये आदमी कुछ काम नहीं करता, इसके पास टाइम है, बताती है लज्जा आती है, अरे इसके पास कोई टाइम है। अब बताइए, अब यहां तो अब जितने भीड़ जाओ संसार में उतनी अच्छा है, पूरा पैक है हमारा, हमको नो टाइम, आपके पास आने के लिए हमको टाइम नहीं, ऐसा बोलने से बड़ा इज्जत है। हमारे पास टाइम नहीं है बोलने से इज्जत है, और टाइम है बोलने से बस, तो एकदम पूरा भीड़ जाते हैं हम। अब ऐसे व्यक्तियों को मुक्ति की बात करेंगे, संभव कैसे अब सुनाना है